मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 24 अगस्त 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किसी गीत की पंक्ति या शेरो शायरी कविता को लेकर और उस पर बातचीत करने का दिन है और आज मैंने आप सबके लिए फिल्मी गीत की कुछ पंक्तियां चुनी हैं और ये जानते हुए भी मैंने ये पंक्तियां चुनी हैं कि अगर आप नौजवान हैं तो यह गीत आपने शायद ही सुना हो या हो सकता है कि चलते फिरते आपके कानों में पड़ गया हो, लेकिन यदि आपकी एज 50 के आसपास की है तो डेफिनेटली यह गीत आपने जरूर सुना होगा और केवल सुना ही नहीं होगा बल्कि इससे प्रभावित भी होंगे। दोस्तों, मैं ऐसे गीत को क्यों ले रहा हूं, मैं गीत की पंक्तियां आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी सी आपकी भी जिज्ञासा उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। आपने अगर अभी एक फिल्म देखी हो संजू, उसमें सुनील दत्त जी क्या कहते हैं, आप देखिए कि सुनील दत्त जी बताते हैं कि जैसे उनकी पूरी की पूरी जिंदगी फिल्मी गीतों से ही तैयार हुई है, उन्हीं गीतों ने उन्हें कठिनाई के क्षणों में संभाला है, मोटिवेट किया है और अनिर्णय के क्षणों में निर्णय की स्थिति तक पहुंचाया है और इन गीतों ने ही उन्हें जीने की कला सिखाई है और साहस भी प्रदान किया है। यानी कि उस फिल्म में गीतों को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि वो सुनील दत्त जी के जीवन के आधार रहे हों और मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रसंग याद आ रहे होंगे। क्या वो केवल एक फिल्मी ताना बाना है या जीवन की सच्चाई भी है? फ्रेंड्स, आप सबसे पूर्व इजाजत लेकर के ही मैं कहना चाहूंगा कि इसे मैं अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध करते हुए पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जीवन की सच्चाई है। मुझे ये नहीं मालूम कि सुनील दत्त जी के जीवन की कितनी सच्चाई रही होगी जिन्हें फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि यह जीवन की सच्चाई जरूर रही है। दोस्तों, अपने ही बारे में मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा बातें, और इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि हम इन चीजों को, यानी कि जो फिल्मी गीत होते हैं, शेरो शायरी की लाइनें होती हैं, पोएट्री होती है, चौपाइयां, दोहे, जो भी हम सुनते हैं, इनको थोड़ा सा संवेदना के स्तर पर महसूस करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। ये केवल एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व और हमारी चेतना के रेशे रेशे का निर्माण करते हैं और हमें पता नहीं लगता कि ये कब ऐसा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इस बात की होती, यानी बिना किसी प्रयास के मनोरंजन ही मनोरंजन में हमारा निर्माण होता चला जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो मुझे बहुत स्मृति है अपने गांव की 1965 के बाद की है, और यूं कह लीजिए कि 1968 तक पहुंचते मुझे चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगी थी, या यूं कह लीजिए कि मैच्योरिटी की एज की शुरुआत हो गई थी। मैं चीजों को समझने लगा था कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, जिंदगी को समझने की कोशिश करता था। और 1970 तक आते आते आपने पढ़ा होगा या बड़े अपने बुजुर्गों से बात कीजिए तो भारत में ट्रांजिस्टर क्रांति लगभग लगभग घटित हो चुकी थी, यानी कि ट्रांजिस्टर की शुरुआत हो गई थी और ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी क्रांति रही है कम्युनिकेशन के फील्ड में। मैं जब उन दिनों की याद करता हूं, अपने गांव के दिनों को, दोस्तों मुझे लगता है कि सच में अगर उस समय ट्रांजिस्टर नहीं रहा होता तो मेरी अपनी जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं तो वो जिंदगी कितनी बदरंग रही होती, कितनी नीरस रही होती। और ये मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, उस समय ट्रांजिस्टर पर गाने आते थे, वो सुनते थे, उससे समय कटता था, नहीं तो गांव में तो समय काटने के लिए आपके पास दूसरा कोई आधार ही नहीं है। जो मेरा गांव उबी छत्तीसगढ़ का बहुत पिछड़ा हुआ जिला सरगुजा, जिसका हेडक्वार्टर अंबिकापुर है और उसका उससे भी हेडक्वार्टर से भी लगभग 50-55 किलोमीटर दूर गांव जिसका नाम प्यारा सा चंद्रमेढ़ा है। नो डाउट मित्रों कि मुझे अपने गांव से आज भी प्रेम है, बेहद प्रेम है, लेकिन उस तरह का मोह नहीं जिसे मैं कहूं कि मैं सारी चीजों को बहुत सही सही ही मान करके चलूं, क्योंकि उस समय ऊब भी होती थी और उस ऊब को तोड़ने का काम जो किया करता था वो ट्रांजिस्टर किया करता था। खूब गाने सुनते थे और फिर क्रिकेट जानता नहीं था मैं खेलना, न मुझे कुछ समझ में आती थी, लेकिन कमेंट्री खूब सुनते थे तो उससे समय कट जाता था। तो खूब उस समय हम लोगों ने गाने सुने हैं। और 1970 की एक फिल्म आई थी 1970 में यादगार, उसमें एक गीत था, मैं अब आपको गीत की पंक्तियों तक ले जा रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। फिल्म में ये गीत मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया है और जिसे गाया है मेरे बहुत ही पसंदीदा गायक महेंद्र कपूर, जिन्हें मैंने कई बार स्टेज पर सामने बैठकर सुना है, ये मेरा सौभाग्य रहा है। महेंद्र कपूर, उन्होंने इस गीत को गाया है। मैं अब आपको गीत की पंक्तियां बता देता हूं, लेकिन गा करके नहीं सुना सकता, इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि अगर बहुत अच्छा गीत बेसुरे तरीके से गाया जाए तो फिर उस गीत का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। और मैं, मुझे इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं सुर में कोई चीज गा भी सकता हूं, राइट फ्रेंड। ये गीत लाइनें सुनिए गाया, इसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे जो भी वक्त बन जाएगा। गीत है, फिल्म में एक व्यक्ति है और वो पूछता है मनोज कुमार से कि अच्छा भगवान अगर मंदिर में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। अब आप देखिए कि वो भगवान की बात कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान कहां मिलेगा, लेकिन इस गीत को समझने की कोशिश कीजिए कि वो उसको कितना विस्तार दे रहे हैं और कितनी सामाजिकता से जोड़ रहे हैं। और वो जो 1970 का पीरियड था, उसके आसपास का 1970 से 80 का पीरियड, ये भारत में एक प्रगतिशीलता का एक जबरदस्त दौर का पीरियड था, बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच के लोग थे और उसके लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहते थे। दोस्तों गीत की पंक्तियां हैं, वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। वो खेत, दोस्तों माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा गा दिया कि आपको थोड़ा सा रिदम पता लग जाए और शायद रिदम के माध्यम से आपको याद आ जाए कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूं। इसके बाद इसकी जो और पंक्तियां हैं दो, वो मैं यहां स्पेशली रखना चाहूंगा। ये पंक्तियां आप थोड़ा सा संवेदना के स्तर पर उतर करके सुनिएगा मित्रों। वो पंक्तियां हैं, गंगा से भी है पावन मजदूर का पसीना, गंगा से भी है पावन मजदूर का पसीना, पानी न कोई समझे अनमोल ये नगीना, ऐसे ही पसीनों के निर्माण में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा। दोस्तों उस समय भी जब मैं इस गीत को सुनता था तो रोमांचित हो जाता था, और अभी जब मैं आपको बेसुर में सुना रहा हूं, सच पूछे तो मैं तब भी रोमांचित हो गया हूं। अब आप देखिए कि यहां धर्म की क्या परिभाषा दी जा रही है, ईश्वर के बारे में किस तरीके से बताया जा रहा है, और खासकर भारत जैसे सामंतवादी समाज में जो श्रम है, कर्म है, कर्म ही गीता का संदेश है, उसको कितने खूबसूरत तरीके से व्यावहारिक जीवन को सामने रख कर बताया जा रहा है। हम खून चढ़ा सकते हैं दूसरे का, दूध ला सकते हैं गाय से, लेकिन पसीना कहां से लाएंगे, और पसीना निकलेगा कब, पसीना निकलेगा श्रम से, मेहनत से। एक जो सामंतवादी समाज की जो मैंने बात की दोस्तों, इसलिए कि जो सामंतवादी समाज है वो शारीरिक श्रम की अवहेलना करता है, हमें लगता है कि अगर हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं तो हम छोटे हो गए हैं, और हम फिर जब शारीरिक श्रम की अवहेलना करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो शारीरिक श्रम से लगे हुए हैं, उन कामों में लगे हुए, उनकी भी अवहेलना करते हैं, और जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, अफसर हैं, जो कुछ इस तरह के शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत ऊंचे ओहदे पर, बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लोग हैं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है वो बेसिकली श्रम में है, वो खेत और खलिहान में है, और इसी गाने में ही, इसी गीत में बताया गया है कि वो मजदूर में है और किसान में मिलेगा, वो मजदूर में मिलेगा किसान में मिलेगा। और ये जो पसीना है, याद रखिए, जो श्रम से बहाया गया पसीना है वो गंगा से भी पवित्र है, गंगा से भी पवित्र। अब इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है दोस्तों। इसके माध्यम से जो खासकर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो ये कि हम सबको न केवल श्रम का सम्मान करने के लिए ही आगे आना चाहिए बल्कि अपनी जिंदगी में इस श्रम को स्थान भी देना चाहिए, क्योंकि यह श्रम ही है जो हमारे अंतर मन को मांझता है। और जो दूसरी बात है मित्रों, जो मुझे लगता है कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, कि मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सब जब इस तरह के पोएट्री और कविताओं के संपर्क में आते हैं तो उनकी जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो बातें प्रभावित करती हैं, उन्हें अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। नौजवानों से खासकर मैं अपील इसलिए कर रहा हूं कि अभी आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन जीवन के इस दौर में पहुंचकर मित्रों, अगर मैं अपने व्यक्तित्व और अपनी चेतना के एक एक रेशे का विश्लेषण करने की कोशिश करूं कि ये कहां से आया, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूं कि ये चीज मुझ में कहां से आई है। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं पाता हूं कि उसकी ढेर सारी चीजें गीतों से आई हैं, कविताओं से आई हैं, पोएट्री से आई हैं, साहित्य से आई हैं, बचपन में सुनी गई कहानियों से आई हैं, इन सब से आई हैं। और आप भी एक दौर में जाकर के ऐसा महसूस करेंगे तो बेहतर है कि अगर हम अभी से सतर्क हो जाएं, यानी कि आप अभी से सतर्क हो जाएं, तो जब आप उस दौर में पहुंचेंगे और समीक्षा करेंगे तो आपके पास खुश होने के लिए ढेर सारी चीजें होंगी और आप अपनी पीठ भी थपथपा सकेंगे और शायद उन क्षणों में, क्षण भर के लिए ही सही, शायद मुझे याद कर सकें कि मैंने ऐसी कोई बात आपसे कही थी और सजेस्ट किया था कि बेहतर है कि इस मायने में आप अभी से सतर्क हो जाए। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार के बाद सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर नई नई और मजेदार बातें होंगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं आप सबको देते हुए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।